الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدرسن کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ. فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انعامات کی صورت میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی صورت میں انشاءاللہ یہ فوائد اور برکتیں قیامت کے دن بھی ہم دیکھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مدرسین کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص پہلے کچھ موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ العزیز ممکنہ صورت میں شامل کیے جائیں گے. پروگرام کے آخر میں ہم سیگمنٹ کرتے ہیں سوال جواب، اس کے اندر وہ سوال اور جوابات بھی شامل کیے جاتے ہیں. ابتداءً کچھ موضوع سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے اتفاق اور اتحاد، آپس میں باہمی طور پر، چونکہ ایک معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور بالخصوص مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سے حقوق لازم ہوتے ہیں، اور ان کی پاسداری کرنا، ان کا خیال رکھنا، اپنی طرف سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ آسانیاں پہنچیں، یہ شریعت کو مطلوب ہیں، یہ شریعت مطہرہ کو مقصود ہیں. اللہ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے کہ دلوں کے اندر پیار، محبت، اتفاق، اتحاد وہ راسخ ہو جائے. اگر دل آپس میں وہ جڑے ہوئے نہ ہوں، دلوں کے اندر آپس میں دھراڑ ہو، دلوں کے اندر بغض ہو، دلوں کے اندر اگر معاذ اللہ کینہ ہو، تو پھر ایک کمرے میں رہتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک جگہ کام کاج کرتے ہوئے وہ آدمی ساتھ بھی ہے تو گویا کہ ایسے کہ وہ بہت بہت دور ہیں. اور اسلام کو تو یہ پسند، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جس انداز سے اس کو رہنا ہے، اور بلکہ مسلمان کی ایک علامت یہ بیان فرمائے، اگرچہ وہ دور دور شہروں میں رہتے ہوں لیکن ان کے اندر آپس میں پیار، محبت، اتحاد ہو. اور منافقین کی یہ علامت بیان کی ہے کہ یہ اگرچہ ایک شہر میں ہی ہوں لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ نفاق ہے. اسی لیے دو زبان والوں کی مذمت بیان کی ہے، دو زبان یعنی ادھر کچھ اور ادھر کچھ. تو آدمی کا دل بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہو، جو کچھ دل ہے وہ زبان پر ہے اور جو زبان پر ہے وہ دل میں. زبان پر کچھ और दिल में कुछ, तो ये भी दो जबानें हुई, एक तरह की ये दो जबानें हैं और इसकी मजम्मत है हमारे दीन में और निफाक की अलामत में से एक अलामत इसे भी करार दिया गया है। तो आदमी साथ रहे या दूर रहे, इत्तिफाक इत्तिहाद की ऐसी वो कैफियत है कि जो हमें हर वक्त इसका ख्याल रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं कि अगर इन मुसलमान के लिए जो फरमाए एक जिस्म की तरह, अगर एक उज्व को तकलीफ पहुंचती है तो पूरे जिस्म को गोया के तकलीफ पहुंचती है। तो मुसलमान की मुसलमान के साथ ये कैफियत बयान की गई है कि एक को यानी तकलीफ पहुंचे तो दूसरा भी उस तकलीफ को गोया के महसूस करे और उस तकलीफ को दूर करने की जहां तक उससे मुमकिन हो सके वो कोशिश करे। अल्लाह ने इस नेमत का कुरान में भी जिक्र फरमाया कि रब ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत को पैदा कर दिया है। तो जहां प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक की वो कैफियत बरकरार है, ये रब का शुक्र अदा करना चाहिए, और जहां नहीं है इसको पैदा करने की कोशिश करें। इसी से घर चलते हैं, इसी से कारोबार बसते हैं, इसी से शहर आबाद होते हैं, आबादियां आबाद होती हैं। अमन अमान, ये हमारा इस्लाम बिल्कुल इसका दर्स और तालीम वाज़े तौर पर इरशाद फरमाता है। सूरह आले इमरान में रब ताला ने उस नेमत को जो जिक्र फरमाया है, आइए पहले वो सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ बैना कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। इरशाद फरमाया, और अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो, जब तुम में दुश्मनी थी उसने तुम्हारे दिलों में मलाप पैदा कर दिया, उल्फत को डाल दिया, मोहब्बत को डाल दिया, और इरशाद फरमाया तो उसके फजल से तुम आपस में भाई भाई हो गए। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन तो भाई भाई हैं। और वाकई ही ऐसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात देखें, और बिलखुसूस जब एक मुसलमान किसी मुश्किल में आते हैं, आप हिजरत के वाकियात को उठाकर देख लें, रब ताला ने उन मोमिनों की बड़ी तारीफ फरमाई है कि हिजरत के मौके पर एक तो वो कि जिन्होंने हिजरत की, और एक वो जिन्होंने सामने से उनको अपना भाई बनाया और मदद की है। ये अखुवत का एक बहुत बड़ा जो दर्स इस हिजरत के अंदर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने दिया, और आपस में बाकी भाई भाई बनाए कि तुम इसके भाई, तुम इसके भाई, तुम इसके, जिसे कहते ना जोड़ियां बना देना, तो दो दो को रफीक बना देना, तो उनके अंदर एक आपने भाईचारे वाली ये कैफियत ऐसी बनाई। तो यहाँ तक के असहाब ने बिलखसूस वो अनसार साहबा मदीने के रहने वाले अपनी जमीनों को आधा करके एक टुकड़ा उसे दे दिया, भी आप इससे तिजारत करो, अपने काम करो, फसल बनाओ, काटो, उससे कमाई करो, रोजगार का जरिया, आधा ये अपने घरों में से जगह उनके लिए दे देना, कारोबार में से जगह उनके लिए दे देना। और बाज़ तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी मिसालें भी पेश आई हैं कि रहती दुनिया तक वो मिसाल ही रहेगी कि किस तरह अनसार साहबा ने लोगों की जो है वो मदद की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी भी तारीफ फरमाई और कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वल्लदीना आमनु वहाजरु वजाहदु फी सबीलिल्लाह वल्लदीना आवौ वनसरु उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुन वरिज़्कुन करीम। इरशाद फरमाया, और वो जो ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में लड़े, और जिन्होंने जगह दी और मदद की, जिन्होंने जगह दी और मदद की, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मगफिरतुन वरिज़्कुन करीम। इरशाद फरमाया, उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है, इज्जत वाली रोजी है उन मुसलमानों के लिए, राह में हिजरत करने वाले, इनकी भी फजीलत को बयान किया और जिन्होंने आगे उनके लिए नुसरत का एहतमाम किया है, उनके साथ उनको जगह देना, उनके साथ भलाई करना, तो ये ईमान की एक गोया के कहें कि पुख्ता निशानियों में से एक निशानी है। पक्के सच्चे मुसलमान कहलाने के वो हकदार हैं, जो अमल के एतबार से, किरदार के एतबार से भी वैसे मुसलमान हैं कि जिस तरह इस्लाम उनसे चाहता है, जिस तरह इस्लाम उनसे चाहता है। तो ये बहुत बड़ी एक मिसाल है रहती दुनिया तक। इसी की मिसालें देकर हम आगे तरगीबात देंगे कि जब भी मुसलमानों में कभी कोई ऐसी परेशानी वाला मामला आता है तो दूसरे भाइयों को, दूसरे मुसलमानों को उनके साथ एक अच्छाई और बेहतरी और भलाई वाला काम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो मेरी वजह से आपस में मोहब्बत करते हैं। फिर फरमाया, मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करते हैं। मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूं जो मेरी वजह से एक दूसरे की मदद करते हैं। ये वो आमाल हैं कि गोया के अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का एक सबब और जरिया ये बयान किया कि आदमी किसी से मुलाकात भी अल्लाह की रजा के लिए करे, रब को राजी करने के लिए मुलाकात करता है उससे, या मदद करता है, या उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता ताल्लुक है, लेकिन है किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। तो ये मुलाकात करना या उससे मोहब्बत का वो रिश्ता कायम रखना, उस पर खर्च करना इसलिए कि मेरा रब राजी हो जाए, और ये अमल रब की रिजा के लिए मैं कर रहा हूं, अल्लाह के लिए कर रहा हूं, तो ये अल्लाह की मोहब्बत इस आदमी को मिल जाती है। अल्लाह की मोहब्बत इस आदमी को मिल जाती है। जब अल्लाह की मोहब्बत आदमी को मिल जाती है और अल्लाह किसी को अपना जब महबूब बना लेता है, सुभान अल्लाह, अज़्ज़वजल फरिश्तों को हुक्म देता है कि मैं फुलां से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, आसमानों में ऐलान कर दो मैं फुलां से मोहब्बत करता हूं। जमीन के अंदर उस आदमी की मकबूलियत को रख लिया जाता है जिस आदमी से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का एक जरिया आपस में मोहब्बत कायम करना, आपस में एक दूसरे के साथ मदद वाला ताल्लुक कायम करना, आपस में एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करना, ये भी अल्लाह की मोहब्बत यूं भी हासिल हो सकती है। मदनीसन के नाजरीन, बाद ऐसे असबाब हैं और ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज भी होता है। कुछ अमल ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत का जरिया और सबब बनते हैं, और बाज वो चीजें होती हैं कि जिनसे रब नाराज भी होता है और उनके लिए बड़े सख्त तरीन अजाबात हैं। उनका भी ताल्लुक हमारे इसी मुआशरे से ही अगर कहें तो उन्हीं बातों से है। एक हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर तुम में से मेरे सबसे ज्यादा महबूब और तुम में से मेरी मजलिस में सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में अच्छे अखलाक वाले होंगे और नरम को होंगे। अच्छे अखलाक और नरमी अपनाने वाले, ये क्यामत के दिन कुर्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने का और हुजूर अलैहिस्सलाम के पसंदीदा बंदे बनकर यानी उठने का क्यामत के दिन जो अमल बयान फरमाया जा रहा है, अच्छे अखलाक, अखलाके हसना। बड़ी लंबी डिटेल है, इसकी तफसील है। अगरचे किसी को खंदा पेशानी के साथ मुलाकात करना, मुस्कुरा कर किसी के साथ बातचीत करना, ये भी अखलाक के ही उसी दायरा कार में है, और ये भी मतलूब है हमारे دین کو ہماری شریعت کو یہ مطلوب ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں، جب ان سے بات کی جاتی تو مسکراتے ہیں، مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ ان سے وجہ پوچھی کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں ایسے مسکرا کر بیان کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا کر گفتگو فرماتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک بھی ایسی تھی، قربان جائے صحابہ غم لے کر دکھ لے کر کسی پتہ نہیں کیسی کیسی کیفیات میں آتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو پھر گویا کہ جو ہے وہ مسکراتے ہوئے واپسی جاتے تھے، آتے غم لے کر تھے لیکن جاتے وہ مسکرانے کی کیفیت کے ساتھ تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز تھا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور یہ نرمی ہی اس کو سبب بیان کیا گیا کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک وہ جھرمٹ لگتا گیا اور آتے رہے اسلام میں داخل ہوتے رہے ہوتے رہے، یہاں تک کہ دنیا بھر کے اندر یہ اسلام کا پیغام وہ پہنچائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو زندگی وہ حیات طیبہ حیات ظاہری وہ 23 سال تھی، تبلیغ کا عرصہ یہ 23 سال ہے، 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ ہم انبیاء کرام کی اگر سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اور اتنی عرصے تک، اور قرآن میں پوری سورہ نوح ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے وہ باتیں اور اقوال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے کہ نوح علیہ السلام وہ کہتے تھے میں تنہائی میں بھی جا کر انفرادی بھی اجتماعی بھی ہر اعتبار سے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی اور اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور 950 سال یہ تبلیغ آپ نے فرمائی، تو اس کے بعد بھی جو مسلمان ہوئے جو ان پر ایمان لائے ان کی تعداد 70 اور 80 کو بیان کیا گیا، یہ تعداد کو بیان کیا گیا، اور اللہ کی یہ رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ 23 سال کے عرصے کے اندر یہ پیغام کس قدر وسیع پیمانے پر پھیلا ہے اور اسلام کو کتنی بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئی، اور اس کی ایک وجہ اور حکمت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ تام اور مکمل فرما دیا، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی وہ نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم فرما دیا، اب معاذ اللہ کسی طرح بھی کوئی نبی ہونے کے حوالے سے دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہی دعویٰ کرے گا، سچا نبی نہیں جھوٹا نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آپ ضرور آسمان سے نیچے اتارے جائیں گے اور آپ آئیں گے، لیکن آپ علیہ السلام وہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا، قرب قیامت نزول کریں گے، لیکن وہ آپ سے پہلے ہی نبی دنیا کے اندر یہ نبی بن کر تشریف لا چکے تھے، تو ان کا آنا یہ ختم نبوت والے اس عقیدے کے وہ منافی نہیں ہوگا، اور آپ علیہ السلام جب آئیں گے تو بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بنیں گے، اور سارے نبی امتی، اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے لکھا کہ سارے انبیاء کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص ان کو یہ شرف بھی ملا، وہ نبی بھی ہیں، نبی سے نبوت وہ زائل نہیں ہوتی، اس کی نبوت وہ ختم نہیں ہوتی، نہ عقیدہ ایسا رکھنا جائز بلکہ کفر ہے کہ جو معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی سے نبوت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ بہرحال کلام کچھ زیادہ آگے چلا گیا، مختصراً یہی عرض تھی कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से जिस तरीक़ाकार के मुताबिक आपने सहाबा इकराम अली मिर्दवान और लोगों को आपने जिस तरह दर्श दिया, दीन की आपने तबलीग फरमाई है, ऐसे मुबल्लिग हर एक को और जो दीनी तौर पर जिम्मेदारी रखने वाला हो, इमाम मस्जिद को या आम तौर पर कोई दीनी वजाकता रखना, दीनी तौर पर मुबल्लिग है, तो उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां और बढ़ जाती, एक्स्ट्रा उन्हें जिम्मेदारियां कुछ ऐसी होती हैं कि उनकी वजह से लोग दीन से मोहब्बत करें, दीन से प्यार करें, दीन से माद अल्लाह वो वजन ना हो, उनकी वजह से कोई दीन से दूर ना हो बल्कि दीन के करीब ही हो। बहरहाल ये हदीस पाक जो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत के दिन मेरे करीब वो होगा और मेरे महबूब वो होगा जो हुस्ने अखलाक वाला और नरमी वाला। अच्छा, आगे फिर इरशाद फरमाया वो लोगों से उल्फत रखते हों और लोग उनसे मोहब्बत करते हों, और साथ ये इरशाद फरमा दिया कि क्यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा काबिले नफरत और क्यामत के दिन मेरी मजलिस से दूर सबसे ज्यादा कौन होगा। मदीन के नाजरीन, ये बात बड़ी तवज्जो से मैं और आप सब सुने और इसको समझने की भी कोशिश करें। क्यामत का वो दिन, वो क्यामत का दिन कि जिस वक्त नफ्सा नफसी का आलम हो कि माँ अपने बेटों से, भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, और खुश नसीब होंगे जिन्हें कुर्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगा, और बद नसीबी उनके लिए कि क्यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे नाराजगी का इजहार फरमाए और वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस से बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। आपने पहले से ये चीजें बयान फरमा दी हैं ताकि उम्मती इनको सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारे। तो इरशाद फरमाया तुम में से मेरे सबसे ज्यादा काबिले नफरत और क्यामत के दिन मेरी मजलिस से सबसे ज्यादा दूर वो होगा। फरमाया जो मुंह भरकर बातें करने वाले, बातें बनाकर लोगों को मरगूब करने वाले और तकब्बुर करने वाले, और तकब्बुर करने वाले हो। कि जब इंसान के अंदर किब्र तकब्बुर आ जाता है तो फिर वो दूसरों को हकीर जानता है। जब वो दूसरों को हकीर जानेगा और उसके नजदीक वो जिल्लत वाले होंगे तो फिर वो उनसे ना इत्तेफाक करेगा, ना उनसे इत्तेहाद करेगा, ना उनके साथ मिलाप करेगा, ना उनके किसी मामले के साथ वो शरीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग उसके सामने हकीर हैं। किसी को भी हकीर मत जानिए। अल्लाह ने अगर आपको नेमतों से नवाजा है, इज्जतों से नवाजा है, तो फिर जवाले नेमत से भी डरते रहिए। क्या इस मुआशरे में हम नहीं देखते वो बड़ी बड़े मकाम और मर्तबे हासिल करके फिर कहां से कहां आ जाते हैं? क्या इस मुआशरे में वो बिजनेसमैन और कारोबारी हम नहीं देखते कि जिनके कारोबार और जिनके बिजनेस की कहते ना कि तूती बचती है, लेकिन उनको क्या रोड पर आते हम नहीं देखते? देखते। अच्छी खासी नेमतों वाले, हसीनो जमील, लेकिन अचानक एक्सीडेंट की सूरत में चेहरे का हुसन भी गया और आजा भी आधे टूट गए। ऐसे मुआशरे में लोग हम नहीं देखते? देखते हैं। हम देखते हैं तो हम उनको माज अल्लाह को ये ना कहें कि ये इसने तकब्बुर किया होगा इस वजह से इसके साथ ऐसा हो गया, या ये हकीर जानता था लोगों को इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। हम किसी खास बंदे को नहीं कहेंगे, हमें नहीं उसके दिल पर कोई मामला पर इत्तला, लेकिन समझने के लिए, समझने के लिए मैं और आप सब इन चीजों को अपने तौर पर तो हम जरूर समझ सकते कि जो नेमत है कल को अगर चली गई तो फिर क्या होगा। मैं जबान से बात कर रहा हूं, अल्लाह अगर इल्म की नेमत देता है, जबान से बोलने की और वो अपना मैसेज पैगाम आगे पहुंचाने की, ये भी नेमत है रब तआला। पिछले दिनों एक 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 से मुलाकात हुई, चंद साल पहले की बात है, फिर भी मुलाकात होती रहती उनसे, साहिब से, बहुत अपने दौर में वक्त में खतीब थे, बहुत अच्छे खतीब, बोलने वाले, जिनकी खिताबत और जिनके जुम्मों के खिताब सुनने के लिए लोग बहुत ज्यादा आते थे, तरजीह देते थे वहां जाने को, लेकिन अब जबान साथ नहीं दे रही। अब जबान की ऐसी लुकनत अचानक पैदा होगी, कुछ एक दिमाग का कोई मर्ज हुआ, उसका असर जबान पर हुआ और बोलने से भी कासिर, बास का तो हो जाता ये मामला। तो मैं ये वैसे ही जनरल गुफ्तगू कर रहा हूं कि अल्लाह की जो नेमतें हैं उनमें अगर शुक्र शामिल ना हो, इज शामिल ना हो, बल्कि उन नेमतों के साथ अगर हम माद अल्लाह तकब्बुर अपने अंदर पैदा कर लें, तो फिर जवाले नेमत से डरना चाहिए। हम सबको जवाले नेमत से भी डरना चाहिए। लेकिन फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, किसी को आप देखें उसके कारोबार में नुकसान हुआ है या इस चीज में हुआ है, तो हम आज खुद उस पर हुक्म नहीं लगा देंगे कि इसने नेमत की कदर नहीं की थी, इस वजह से इसके साथ हुआ। लेकिन इसको हमें समझने के लिए हर एक को अपने पास ये मदनी फूल जरूर अपने सीने में सजा के रखना चाहिए। तो बहरहाल वो अमल जिससे अल्लाह के रसूल नाराज हों और क्यामत के दिन वो नाराजगी का सबब बने, ये जरूर हमें इन चीजों को तर्क करना चाहिए। हमारे दीन ने मुआशरे के अंदर बास कौमियत की वजह से तासुब की बिना पर ऐसे ऐसे तासुब पैदा हो जाते हैं कि कत्लो गार तक पहुंच जाते हैं। वो भूल जाते हैं ये रिश्ता कि हमारा आपस में इस्लाम का भी एक रिश्ता है, ईमान का भी एक रिश्ता है। वो अपनी कौमियत को तरजीह देंगे, वो उसी तासुब को मजीद आगे परवान चढ़ाएंगे, वो अपने पुष्ट पनाई करने वालों की बस उन्हीं के बलबोते पर वो सारे काम करते रहते हैं। माज अल्लाह कत्ल, एक कत्ल नहीं सैकड़ों कत्ल, हजारों कत्ल हो जाते हैं, कई कई सालों तक ऐसे तासुब की बिना पर आपस के अंदर जंगे लड़ी जाती है, नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती है। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें यह दर्स नहीं देता। आज ये दुनिया के चंद सांसें हैं, ये तो वैसे ही गुजर जानी है, लेकिन किसी की ऐसी बातों में आकर जो माद अल्लाह किसी को कत्ल पर उकसाते हों, जो दूसरों के साथ उनके नुकसान करने पर उकसाते हों, कभी उनकी बातों में ना आए। आज दुनिया में इंसान सोचता होगा मेरी पुष्पनाई करने वाले वो हैं, फलाएं है, फलाएं है, बहुत लंबे हाथ हैं, छुट जाएंगे, अगर कोई मसला भी हुआ तो ये जेल से भी निकाल लेंगे, फलां से भी निकाल लेंगे, केस भी खत्म करा लेंगे। ये दुनिया में तो ठीक है, पॉसिबल, मुमकिन, अगर ऐसा हो भी गया, क्या ये आखिरत में भी छुड़ा पाएंगे, उस गुनाह का जिम्मा अपने ऊपर ले पाएंगे? आप में से हर एक मुसलमान का ये जवाब होगा और ईमान अकीदा है, नहीं नहीं, क्यामत के दिन कुछ ऐसी गलत सिफारिशें नहीं चलेंगी। क्यामत के दिन हमारे इस तरह के जो लूट मार किए हुए चीजें हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें यूं बचा कर ले जाए, नहीं, हम इसके जवाब देने, वह इसके जवाब देने। वही ना अलीकुम नहाफिदीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में वाज़ेह इसकी तालीम इरशाद फरमाए, तुम पर मुहाफिज फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन हैं, वो सब कुछ जानते हैं जो तुम करते हो, नेकोकार जन्नतों में होंगे और फुज्जार जो हैं वो जहन्नम में। तो उस क़यामत के दिन से आदमी अपने आप को डराता हुआ तो आज किसी की बातों में ना आए। कोई अगर शय मिल जाती है किसी को कि भाई इस तरीके से वो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करें, नहीं, दुनिया के अंदर भी किसी के साथ अगर प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के, जिसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए हो। और दुनिया के अंदर बाज़ एतबार से किसी के साथ नफरत भी हो, बुग्ज़ भी हो, तो वो भी अल्लाह के लिए हो। جی جی الحب فی اللہ والبغض للہ، یہ سارے معاملات یہ اللہ کے لیے جب ہوں گے، کسی کو دینا تو اللہ کے لیے، کسی کو منع کرنا تو بھی اللہ کے لیے، تو پھر اس کے آخرت کے اندر ہم انعامات دیکھیں گے. اور دنیا کے کسی کے اپنے بڑوں کے چاہنے پر اور ان کے کہنوں پر اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہو، کسی کے ساتھ مار دھاڑ کرتا ہو، قتل و غارت کرتا ہو، اور اس معاشرے کے امن کو تباہ کرتا ہو، قیامت کے دن بڑی سخت سزائیں. حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے بارے میں سوال، قتل ناحق، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال. عبادات کے معاملات میں سب سے پہلے نماز کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا سوال. تو قومیت کی وجہ سے، تعصب کی بنا پر اس طرح کے قتل و غارت، یہ اسلام تو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام نے تو قومیت اور ان چیزوں کو پہلے ہی بیان فرما دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے رنگ والے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد، جو تم میں سے پرہیزگار ہیں، تم میں تقوی والے، ان کو فضیلت. تو جب فضیلت کا معیار ہی یہی ہے تو پھر اپنی قومیت کی بنا پر یا اپنی نسبیت، اس وجہ سے انسان دوسروں کے اوپر جو ہے وہ تکبر کرے اور دوسروں کو حقیر جانے، اس کی اسلام کیسے اجازت ہے؟ تو آج کا پیغام اس پروگرام ہمارا اسلام میں یہی ہے، امن امان یہ قائم رکھنا میری اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس ٹاپک کو انشاءاللہ مزید بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور چند ایسی باتیں اور بھی شامل کریں گے کہ جن کی وجہ سے امن امان قائم رہ سکے اور معاشرے کے اندر جو یہ برائی اور وبا ایک طرح کی ذہنی طور پر پھیلائی جا رہی ہے اور ذہنی طور پر ہم اسے نکل نہیں پا رہے ہیں، جس میں تعصب اور قومیت کی بنا پر جو تعصب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. ایک سیگمنٹ ہے ہمارا سوال، جو اس کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں
محترم، میں نے آپ کا یہ پروگرام ابھی ٹی وی کے اوپر سن رہا ہوں، تو آج ایک دفعہ فرض ہے. اب یہ ہے کہ اگر آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، حج نہیں کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟
حج ایک بار فرض ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جس آدمی پر شرائط پوری ہوتی ہوں اور استطاعت ہے اسے وہاں جانے کی، تو حج ایک بار ہی ہے زندگی میں. عمرہ کر لیا تو اس سے حج فرض نہیں ہوتا. یہ لوگوں میں بعض اوقات ایک اشکال آ جاتا ہے، ذہن میں آتی باتیں، کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو پھر اس کے بعد اس پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. عمرہ کسی نے کر لیا، ٹھیک ہے، عمرہ کرنا بھی اچھی بات، ثواب کا کام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حج کو چھوڑ کر عمرہ کرنا، یہ عمل یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض ایسے گھر کے سربراہ ہوتے ہیں کہ ان پر حج کا فریضہ لازم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم حج پہ گئے تو 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، تو پھر ہماری فیملی عمرہ کہاں سے کرے گی؟ حالانکہ اس پر حج کی شرائط اس سربراہ پہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری فیملی کو چکے عمرے پہ لے کے جانا ہے، سب کو عمرے پہ لے جاتے ہیں، حج کو ترک کر دیتے ہیں. ایسا وہ سربراہ ایسا نہیں کر سکتا. تو حج یہ زندگی میں ایک بار ہی ہے، جس پر شرائط پوری ہوتی ہوں اور اس کے اندر مالی طور پہ طاقت ہونا، صحت کے اعتبار سے طاقت ہونا، وہاں پہنچنے کی سہولت ہونا، یہ ساری شرائط جو حج کی ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر آدمی یہ ضرور اپنے بارے میں فیصلہ کرے اور جلد سے جلد اس کو ادا کرنا ہے. جی جی حج میں تاخیر کرنا کہ فرض ہو چکا ہو حج اور پھر کہے کہ بس ٹھیک ہے پھر کر لیں گے پھر کر لیں گے پھر کر لیں گے، اپنی طرف سے اس کو تاخیر کرنے کی وہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے. شرن یہ گناہگار ہوگا اگر حج کو یہ مؤخر کرتا رہے گا، یعنی بعد میں کر لیں گے. और उमरा, जहां तक आपका सवाल है कि उमरा कर लिया, तो सिर्फ उमरा करने से, बाज़ लोगों के पास पैसे ही इतने होते हैं कि उमरा करके आ जाते हैं, तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि आपने उमरा कर लिया तो अब आप हज भी करो, आप पर हज भी लाजिम हो चुका है, ये नहीं। हज के लिए अपनी वही शरायतें, वही कैटेगरी है, वो पूरी होंगी तो बिल्कुल हज भी उस पर लाजिम होगा, वरना फर्ज नहीं होगा। जी मजीद,
हेलो, सवाल ये है कि बारिश का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
बारिश का पानी बिल्कुल पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बारिश का पानी ताहिर भी है, मुताहिर भी है, पाक भी है, पाक करने वाला भी है, और मान तहूरा इसे कुरान पाक में बयान फरमाया गया है, तो बिल्कुल इसे पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी वगैरह आपने कोई ऐसे जमा कर लिया तो उसे वुजू करना चाहें तो बिल्कुल आप उससे वुजू भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये पाक पानी। जी
कड़ी साहब, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जोहर की नमाज कजा करनी हो वो मुकम्मल रकाते पढ़ी जाती हैं या चार फर्ज ही बस पढ़ने हैं, ये बता दीजिए।
कोई भी नमाज जैसे कजा करनी है, आपने जोहर की नमाज है या दीगर नमाजें हैं, तो इसके अंदर फराइज की कजा होती है और इशा के अंदर सात वाजिब यानी वितर की भी कजा होती है। इसके अलावा जब आप कजाएं पढ़ते हैं तो फिर आप सिर्फ फर्ज की कजा होती है, सुन्नतों की इस वो कजा नहीं है, नवाफिल की भी कजा नहीं है, बस आपने फराइज पढ़ने हैं। जोहर की कजा पढ़नी है तो चार रकतें फर्ज उसकी, वो आप उसकी कजा करें। हाँ, इशा की अगर किसी की नमाज रह जाती हो तो फिर इशा के अंदर वो फर्ज और साथ तीन वितर, इनकी भी कजा करना वो लाजमी होगी। जी
मुफ्ती साहब की बारगाह में यह सवाल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अंगूठा क्यों चूमते हैं?
ये मोहब्बत की एक निशानी है और अलामत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर अपने अंगूठों को, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आए तो चूम लेना, ये खुद सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब अजान की जा रही थी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आया तो आपने चूमे। जब आपने ऐसा किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के बाद फिर आपने लोगों से इरशाद फरमाया, मन फाला मिसला मा फाला खलीली, कि जिसने मेरे खलील की तरह किया है यानी अबू बकर की तरह जो करेगा उसके लिए मेरी शफात है। तो ये एक मोहब्बत की निशानी भी है और यूं हजरत सिद्दीक अकबर ने भी अमल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे पसंद फरमाना, उस पर शफात की बशारतें देना। और उलमा ने बड़ी इसकी टॉपिक पर बड़ी वजाहत से बात की, बिलखसूस इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलै रहमा ने इस रिवायत के मुतल्लिक भी, और फिर रिवायत बाद लोग इसको यूं कह के छोड़ दे, मैं ज़ईफ रिवायत है तो इसको जो है वो छोड़ दिया जाए, इस पर अमल ना किया जाए। हालांकि ज़ईफ रिवायत भी वो आमाल के अंदर और फजाइल के एतबार से वो मोतबर है, उस पर अमल किया जाता है, उसको वो मौजू नहीं है। ज़ईफ अपनी सनद के एतबार से जरूर गए लेकिन फजाइल के अंदर वो मकबूल है और उस पर अमल किया जाता है। आप आला हजरत का वो रिसाला, इस पर पूरा मुनीरुल ऐन पूरा एक रिसाला है और बड़ा शानदार रिसाला है जिसमें हदीस के ऊपर भी इस टॉपिक पर बड़ी गुफ्तगू की हुई है कि उसूल हदीस के हवाले से, और मैं कहता हूँ कि वो बिलखसूस उलमा के लिए या वो दीनी जो तालिब इल्म हैं, आलिम बन रहे हैं, उनके लिए और हदीस में जो शगफ रखने वाले हों बतौर ख़ास, आप इस रिसाले को पढ़िए, बहुत शानदार रिसाला है और दलाल के साथ इस मौजू पर पूरी वो बातचीत की गई है और इंशाल्लाह आपको बड़ी तसल्ली तशफ़ी होगी। ज़ाहिर है हर एक नहीं पढ़ पाएगा, समझ भी नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जो दीनी शगफ रखने वाले इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें ये रिसाला पढ़ेंगे तो बहुत इंशाल्लाह इल्म में इजाफा होगा। और ये आला हजरत अली रहमा का इसी मौजू पर ख़ास मुनीरुल ऐन और फी हुक्म तकबील इबाहमन, के आप अली सलातो सलाम के नाम मुबारक पर अंगूठे चूमने के हवाले से आपने बड़ी एक रोशन और वाजे वो तहकीक बयान फरमाई है। बहरहाल हमारे लिए ये अमल ही काफ़ी कि जो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने किया اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا اور اس پہ شفاعت کی بشارت عطا فرمائی. یا یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ مستحب عمل ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں کہ جس نے نہ چومے وہ گناہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے. ایک مستحب عمل ہے جو کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تو محبتوں کے ساتھ کرتا ہے، انشاءاللہ ثواب بھی اسے ملے گا. جو نہیں کرتا یا نہیں کر پایا وہ کوئی گناہگار نہیں ہے، اس کو کوئی کسی طرح کا وہ گناہ والا معاملہ نہیں ہے. ہاں جو معاذ اللہ اس چومنے کو گناہ کہتا ہے، اور چونکہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، شریعت پر افتراء ڈال رہا ہے کہ شریعت کی طرف سے منع ہے، وہ شخص ضرور گناہگار ہوگا جو انگوٹھے چومنے والوں کو برا بھلا کہتا ہے یا ان کو چومنے کو گناہ قرار دیتا ہے. تو میں پھر بالکل بات واضح کر دوں، مستحب عمل ہے، کرنے والے کو ثواب ملے گا، نا عمل کیا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو عمل کر رہے ہیں ان کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو یہ ضرور گناہ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شریعت پر افتراء باندھ رہے ہیں. اللہ کریم اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہے. آمین بجاہ نبی.
ہمارا اسلام.